پھر اسی طرح اخلاص سے جو فوائد ہوتے ہیں نا، اس کو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے اخلاص کے نتیجے میں ملتا کیا ہے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کا پھل سامنے نہیں ہوتا وہ کام کرنے کو دل بھی نہیں کرتا. پہلے تو سب سے بڑا بڑا لکھ لیجئے کہ اخلاص دل کی عبادت ہے. اگر اخلاص نہیں ہوگا تو ہم عبادت گزار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو پہلا پھل کیا ہے کہ اخلاص معمولی سے کام کو بھی بڑھا کر پہاڑوں کے برابر کر دیتا ہے. سورہ فرقان آیت 23 وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور جو بھی انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم اسے بکھیر کر غبار بنا دیں گے. کس کے عمل کی قیامت کے دن قدر ہوگی؟ جس کے اندر اخلاص ہوگا. پھر دوسری چیز جو اخلاص کے فوائد میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ جتنا اخلاص زیادہ اتنی استقامت زیادہ. یہ تو ٹپس پہ لکھ لیجئے. کسی کا اپنی نیکی پہ جمنا، دل جمعی، ثبات قلب، یہ اخلاص کے بغیر چلتا نہیں ہے. جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا انسان اپنی نیکیوں کو کر کے اس پہ جم جائے گا. ورنہ بعض دفعہ تو انسان اپنی ہی نیکیوں کو ضائع بھی کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر اگلی چیز کیا ہے اخلاص کے نتیجے میں جو ملتی ہے انسان کو؟ غموں اور تکلیفوں سے نجات. غم کس چیز کی علامت ہے؟ کہ دل پہ بوجھ ہے. جو مخلص ہوتا ہے نا وہ کسی مشکل سے مشکل وقت پر بھی یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ دکھ تو وقتی ہے، اس سے بڑی غم نہ مل جائے، اور وہ کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. پھر اسی طرح ہمارے اسلاف کی عادت کیا تھی؟ کوئی کام کرتے نیکی کا، جیسے آپ نیا کورس شروع کر رہے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں کسی بھی طرح کا، تو سب سے پہلے وہ اپنی نیت چیک کرتے، نیت کا ٹیسٹ کرواتے کہ کر کیوں رہی ہوں، کروانے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح عبد الرحمن بن مہدی ہیں، کہتے ہیں جو شخص بھی کوئی کتاب لکھے، ہوتے ہیں نا لوگ رائٹرز، تو کہتے ہیں سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات لکھے، تاکہ اس کو پوری کتاب کے دوران اپنی فکر ہو. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں بہت سارے معاملے ہیں مسلمانوں کے، آج دین کے نام پہ بھی کیا ہے، آپ ایک لمبا صفحہ خود پڑھیے گا بک میں بعد میں، لیکن آج اس وقت امت مسلمہ جس کشمکش سے گزر رہی ہے آپ سب جانتے ہیں. نیکیاں بہت ہیں، مسجدیں بہت ہیں، ادارے بہت ہیں، سکولز بہت ہیں، کتابیں بہت ہیں، سی ڈیز بہت ہیں، لیکن اخلاص کم ہے. اخلاص جب اندر آتا ہے نا تو انسان اختلاف سے بچتا ہے. یہ بڑا بڑا لکھ لیجئے، اخلاص والے کبھی آپس میں جھگڑتے نہیں ہیں. اختلاف ہو سکتا ہے، مخالفت نہیں ہوتی. کٹ کے دوسرے راستے پہ نہیں چل جاتے، وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بالکل گاڑی کی تین لائنوں کو دیکھ لیجئے، ایک ہی رخ پہ چلتی ہیں، ایک ذرا 60 پہ چل رہی ہے، کوئی 70 پہ، کوئی 40 کی ہے، چلتے جو ٹھیک ہے. لیکن جب دونوں طرف سے گاڑیاں آ اور جا رہی ہیں، اب بھی کیا ہوتا ہے، ایک ایسٹ ٹو ویسٹ ہے تو دوسری ویسٹ ٹو ایسٹ ہے، اسی روڈ پہ رہتے ہیں، کرتے کیا ہے کہ گاڑی گاڑی سے نہ ٹکرائے. اخلاص والا شخص کبھی راستہ نہیں چھوڑتا، کبھی بدلتا ہی نہیں ہے، اور نہ دوسرے سے ٹکراتا ہے، بلکہ وہ اپنی ڈائریکشن چیک کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ ہی ایسٹ ٹو ویسٹ میں آگے، حالانکہ یہ ویسٹ ٹو ایسٹ جانے کی روڈ تھی. دیکھیے نا، 20 گاڑیاں ایک ہی رخ پہ چل رہی ہیں اور آپ کو 20 گاڑیاں اپنے سے اپوزٹ دکھ رہی ہیں. امیجن کرے ذرا، گاڑیوں کو انسان بنائے. کچھ انسانوں کا خیال کیا ہوتا ہے؟ سارے ہی میرے دشمن ہیں، سب میرے خلاف ہیں، میں جہاں جاتی ہوں میرے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، لوگ مجھ سے خوش نہیں. آپ امیجن کیجئے کہ میں ہی بیوقوف تو نہیں ہوں کہ 20 گاڑیاں جا رہی ہیں رائٹ ٹو لیفٹ، اٹس گڈ، تو شاید میں ہی لیفٹ ٹو رائٹ ہوں تاکہ ساری میرے خلاف ہیں. بات کتنوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ جو غلط رخ پہ جائے گا اس کو سارے مخالف دکھیں گے نا. 20 گاڑیاں لے تو نہیں کہہ رہے کہ یہ ایک مخالف ہے، وہ تو کہیں گے یہ غلط لین میں آ گیا بے وقوف، اس کو سمجھاؤ ابھی کسی سے ٹکرا جائے گا. انسانی زندگی میں بہت ساروں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے، سب میرے خلاف، سب کو میرے سے چڑ. آپ کسی بھی جاب یا ادارے میں دیکھ لیجیے جہاں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، ورکرز، لوگوں میں سے کچھ کا خیال ہوتا ہے फला मेरी लेग पुल कर रहा है, फला मेरा दुश्मन है, फला मेरे खिलाफ पटियां पढ़ाता है, फला पढ़ाता है। भाई ये इतने क्यों आप एक के खिलाफ हो गए, क्यों आप बड़े अहम हैं? और याद रखिए कि जुबाने खल्क नकारे खुदा, जिसके बारे में तीन से ज्यादा लोग एक ही बात कह देना कि बात वैसे ही है वो ऐसी ही, तो मान लीजिए तीन लोग गलत नहीं हो सकते, वो एक गलत है। वो झूठा नहीं कह सकते आप गलत, इसलिए कि उसको खुद भी नहीं पता मैं ठीक हूं कि नहीं। लेकिन जब इखलास होता है ना, तो उस वक्त इंसान इस किस्म के काम नहीं करता। यकीन कीजिए आज उम्मते मुस्लिमा के चार सेक्ट, और उसमें आप और उनके बीसियों किस्में डाल लीजिए, अगर सारे वाकई इस्लाम को सर्व कर रहे हैं, सिर्फ इस्लाम को सर्व कर रहे हैं ना, लोगों को जन्नत में भेजना चाहते हैं ना, कि सब एक दफा जन्नत में चले जाएं, तो क्या फर्क पड़ता है आपकी कोशिश से कोई जन्नत पे चला गया, आपकी कोशिश से, आपकी कोशिश से। अब मैं सिर्फ मिसाल दे रही हूं, मैं कोई फिरका वारियत या किसी को वेरीफाई नहीं कर रही, ना कंडेम नहीं कर रही। तबलीगी जमात की कोशिश से एक बंदा जन्नत में चला गया, तो कोई दावा ग्रुप की कोशिश से जन्नत में चला गया, तो किसी हनफी, किसी मालकी, किसी वहाबी, किसी से क्या फर्क पड़ता है? आप किस पे खुश होंगे? अल्लाह का शुक्र है ये जन्नत में पहुंच गया, ये इखलास के साथ होता है। जब सब की कोशिशों में एक टर्म होगी ना कि अल्लाह के बंदों को आग से बचाना है, भाई स्लोगन रखो, नाम रखो, कुछ भी रखो, और जब लोग आपका नाम सुन के कैंसिलेशन दे दें, आप जाएंगे तो फिर हम नहीं आपको जगह देंगे, आपका अकीदा, आपका मसलक, आपका सोच, ये मेरे से ज्यादा आप लोग नहीं जान सकते, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतनी दुनिया में जो ट्रेवल करने का मौका दिया, हर शहर, हर मुल्क, हर जगह कोई ना कोई साथियों को सदमा सहना ही पड़ता है कि आप जमात हमारी से होते तो जरूर आते, हमारे ग्रुप से आते, और फुला फुला। और अल्लाह की कसम खा के कहूँ, जो काम अल्लाह ने लेना होता है ना, वो ले लेता है बंदा, उसके लिए कोशिश करे के ना करे। लोग इनकार कर देते हैं, अल्लाह ताला उनसे कोई ऐसे काम ले लेता है कि अल्लाह वो काम ले लेता है। तो ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आज उम्मते मुस्लिमा को इस अफरा तफरी के दौर में जगह दे। छोटी सी मिसाल देती हूँ, फिर अगले फायदे पे चलते हैं। आप सब यहाँ बैठे में ना, मिसाल है, अल्लाह ना करे, बल्कि यहाँ की तो मुझे मिसाल भी देनी बुरी लगती है, और अल्लाह ना करे कभी ऐसा यहाँ वक्त है घर में, खानदान में, और मुझे अक्सर लोगों के मुझसे ये सुना है कि फलां शादी पे गए 8 दिन रहे, बड़ी लड़ाइयाँ हुई। भाई अल्लाह की बंदी, आप शादी में गई थी, आप ये सुनाए बड़ी ढोलकी बजी तो माने, बड़े गाने गाए तो माने, बड़े टप्पे गाए, ये आप क्या खबर दे रही हैं शादी में कि बड़ी लड़ाइयाँ हुई? आप इमेजिन कीजिए कि शादी वाले घर में एक ड्राइंग रूम में, और सारे वहां उछला कूदी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो कुछ कह रहा है, चचा कुछ कहता है, मामू कुछ कहता है, बेटा कुछ कहता है, और शादियों में इख्तलाफात क्यों होते हैं? यही बातों पर होता है, बेटा कहता है मैंने ये करना है, माँ कहती है वो। इतने में उस कमरे में एक चूहिया घुस जाए, आप मुझे बताइए उनको याद रहेगा हम क्या कह रहे थे? देखिए ये बात इतनी संजीदा, इस पर एक आज की बात भी है छोटी सी, मुझे याद है, झगड़ने वाले लोग एक ड्राइंग रूम में बैठे, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वहां चूहिया आ जाए, वहां सांप का बच्चा आ जाए, वहां कॉकरोच आ जाए, उनको थोड़ी देर में याद भी नहीं रहेगा, हो सकता है एक दूसरे को पकड़ के कुर्सियों पर चढ़ा रहे हो। तो जिसको क्यामत की चूहिया और जिसको क्यामत के धमाके याद हो जाए, वो लड़ सकते हैं और दीन के नाम पर लड़ सकते हैं? ये तो मनारे उस दिन क्यामत के दिन खुलने हमारे। दुआ कीजिए अल्लाह हमें रुस्वा ना करे, मुझे तो सबसे ज्यादा गम अपना कि अल्लाह ये बनेगा हमारे साथ तो क्या बनेगा, ये सारी चीजें हमारे हाथ में ना रखवा देना कि चलो देखो लोगों इनका तमाशा, ये ऊंचे बैठे हुए थे, इनके तमाशे तुम खुद देखो। इसलिए इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की हालत बोल बोल के कह रही है कि दीन वालों में इखलास की कमी है। जब इखलास बहुत होता है ना, तो फिर इंसान के इख्तलाफात हो सकते हैं। हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली की बात पहले सुनाई थी कि झगड़ा हुआ तो उस दौर की सुपर पावर नॉन मुस्लिम बादशाह ने खत लिखा गालिबन अमीर मुआविया को, कहा इधर आओ हमारी तरफ आओ, ये तुम्हारी कदर नहीं करते, चलो आओ जरा हम मिलते हैं, जरा अली के खिलाफ हमला करते हैं। तो हजरत मुआविया ने जवाब में दिया कि देखो हमारे आपस के मामले में तुम ना बोलना, और अगर तुमने अली की तरफ अपनी फौजों का रुख किया तो उनके दिफा में सबसे पहला मैं हूंगा, तुम हमारे मामले में क्यों बोलते हैं, मुसलमान है भाग जो इधर से। ये इखलास होता है। गलत फहमियां हो सकती हैं, मुगालते हो सकते हैं, तबीयतों का फर्क हो सकता है, लेकिन इखलास मौजूद है तो दीन का काम नहीं छूटता, इख्तलाफ मुखालफत में बदल ही नहीं सकता। मान लीजिए आपको ये कड़वी गोली खानी पड़ेगी कि जो कल क्यामत के दिन कहानी खुलनी थी ना, वो दुनिया में खुल गई कि इखलास नहीं था अंदर, कमी अंदर थी, और अगर ये ना हो तो इंसान जम जाता है, फिर ऐसे काम करना बहुत आसान हो जाते हैं। फिर इसी तरह एक बहुत ही खूबसूरत फायदा है जो शायद ही कभी किसी ने सोचा, اور وہ کیا کہ اخلاص نیت گناہوں اور معصیتوں کی بخشش اور مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. کوئی اپنا ماضی کا گناہ یاد کرے, ہر ایک سے ہوتے ہیں, جوانی میں بھی ہوتے ہیں, نا سمجھی میں ہوتے ہیں, کئیوں سے بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹتے. اب آپ نے وہ گناہ کر لیا, اب آپ کہتے ہیں اس گناہ کا کیا کفارہ ہے, کہ توبہ کروں, استغفار کروں, نہیں ہو رہا, معاف نہیں ہو رہا. آپ کے اندر کسی ایک کام کے کرنے کے وقت اتنے اخلاص آ گیا, مثلا کہیں کوئی پیمپر چھوڑ گیا اپنا, تو آپ کہتے ہیں اللہ یہ تیرے لیے اس ٹریش سے اٹھا کے پھینک رہی ہوں کیونکہ تیرا گھر گندا نہ ہو. وہ آپ کا چند منٹ کا اخلاص تھا. دیکھیے یہاں پھر بات لمبی نہ ہو جائے, اخلاص کے بڑے سٹیپس ہیں, اس پہ تو میرا لیے ایک مہینہ بات کریں تو بھی کم ہے, لیکن ہم جو بھی کر سکے وہ کریں گے. بس وہ ایک منٹ کا اخلاص تھا کہ آپ نہیں بھی کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ نے اس پیمپر کو اٹھایا اور نیچے بن میں پھینک دیا کہ اللہ کے گھر میں بونا ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں وہ آپ نے پیمپر نہیں اٹھایا, آپ نے ماضی کا کوئی کبیرہ گناہ اٹھا کے جہنم سے نکلوا کے جنت سے اپنے آپ کو من ڈال دیا. تو انسان جتنا مخلص ہوگا نا, مخلصین بے شک استغفار نہ کریں, اور میں آپ کو کہہ دوں تو آپ, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہی نہ فخر ہو جائے مخلص ہو گئے ہیں. جو مخلص ہیں وہ کوئی فرائض کے بعد ایک عبادت بھی نہیں کرتے نا, اللہ کہتا جاؤ فرشتو یہ مخلص تھے, یہ میرے تھے. الا عبادک منہم المخلصین. اخلاص بڑی قیمتی چیز ہے, اس کو پانے کے لیے انسان کو اپنی فکر کرنی پڑے گی. آپ ایک جملہ لکھ لیں, اخلاص میں اتنی قوت ہے کہ گناہوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے. انسان کبائر اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی جس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ, جس نے کہہ دیا اللہ اس کو جنت دے گا. وہاں کیا تھا, حدیث میں آتا ہے بندے کے 99 دفتر قیامت کے دن اعمال کے ہوں گے جس میں گناہ ہی گناہ. اب گیا اب گیا اب ڈوبا اب ڈوبا, ظاہر ہے نامہ اعمال گناہوں کا بڑھتا جا رہا ہے, دل ڈوب رہا ہے. 99 دفتر, دفتر کہہ لیجئے ریکارڈ کیپنگ بکس, 99 بکس بھر گئیں آپ کے گناہوں کو لکھتے لکھتے. فرشتے رکھ رہے ہیں رکھ رہے ہیں رکھ رہے ہیں رکھ رہے ہیں. اب آپ اپنے اوپر لیں, آپ کا دل تو پتہ نہیں کہاں پاؤں کی انگلیوں میں پہنچا ہوگا. اتنے میں ایک چھوٹی سی پرچی لا الہ الا اللہ کی دوسرے پلڑے میں رکھی, وہ جھک گئے, 99 گناہ اوپر چلے گئے. یہ ہے اخلاص. دعا کریں ہمیں کچھ گھڑیوں کا اخلاص ہی نصیب ہو جائے, کچھ منٹوں کا, کچھ چیزوں کا اخلاص آ جائے. آپ نے کئی بار وہ حدیث نہیں سنی, اسی میں وہ واقعہ بھی آپ نوٹ کر لیں گے کہ وہ زانی عورت کتے کو پانی پلایا تو بچ گئی. کئی لوگوں کو یہ بات آج تک سمجھ ہی نہیں آئی, اور وہ کہتے ہیں بس کتوں سے اچھے رہ لو انسانوں کی خیر ہے, کیونکہ وہ کتے کو پانی پلا کے بچ گئی. وہ کتے کا پانی نہیں تھا, وہ اخلاص تھا. اس کی وہ چھوٹی سی نیکی اللہ نے اس لیے قبول کر لی کہ اس کے دل میں کتنی ہرس آئی ہوگی. کئیوں نے دیکھا ہوگا اس کتے کو گزرتے ہوئے چلے گئے, لیکن اس کو کیا لگا, اللہ تیری مخلوق ہے, یہ پیاسی مر جائے گی تو میں اس کو پانی پلا دوں. اللہ نے اس کو بخشش دے دی. پیچھے بھی حدیث سنائی تھی, غالب آپ کو سنائی تھی یا کہیں اور سنائی تھی, کہ ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں, اور سب سے ہلکی کیا ہے, اماتۃ الاذی عن الطریق, راستے سے ایک خاردار شاخ کو یا تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا. تو یہ تکلیف دہ چیز کو اٹھانا آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ کیوں بننا, یہ کوئی مشکل ہے؟ جو صفائی کرتے ہیں باہر وہ تو سارا دن اٹھاتے ہیں, ان کو کوئی اجر نہیں. آپ کے دل میں اس وقت یہ اخلاص آیا تھا کیا, کہ اللہ کا کوئی بندہ اس سے اٹک کر گر نہ جائے. تو اخلاص بہت بڑی بات ہے, اس کی فکر ہے. پھر اسی طرح سے اخلاص کی ایک اور ویلیو نوٹ کیجئے, اور وہ کیا ہے کہ اخلاص قلب جو ہے نا, وہ باقی اعمال کی قبولیت کا کرائیٹیرین ہے. یہ نہیں کہ صرف اخلاص, باقی کام بھی جو آپ کرتے ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے قبول ہوتے ہیں, اور اس کی غیر موجودگی میں وہ قبول نہیں ہوتے. پھر اسی طرح سے ایک اور چیز نوٹ کیجئے, بہت ہی خوبصورت ہے یہ فائدہ, واقعی سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے, کہ اخلاص مباحات کو عبادات میں تبدیل کر دیتا ہے. مباح کیا ہوتا ہے, جائز. کھانا جائز ہے نا, گھر صاف کرنا جائز ہے نا, یعنی زندگی کے روز مرہ کے کام آپ کے جو ہوتے ہیں نا, اللہ نے کہا کر لو, یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو, آپ نے کیے, ان سب کاموں کو عبادت میں کیسے بدل دیتا ہے, کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا کو بڑی نیکی ہے, اللہ کہتا ہے مرد کے لیے اس میں بھی اجر ہے. کیوں, کیونکہ وہ ایک مباح کام تھا لیکن اس کو سنت سمجھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جمعے کے دن جانا, مسجد جانا, बैतुल्ला का एहतराम करना, इतर लगाना, छोटे छोटे काम, बंदों को तकलीफ से बचाते हुए सिगरेट से बचना, प्यास लहसुन से बचना, ये सब कुछ चीज़ें जो इंसान के अंदर के अखलास को साबित करती हैं। फिर इसी तरह से एक और चीज़ भी नोट कर लें, और वो क्या है कि जितना अखलास इंसान के अंदर आता जाएगा ना, उतना मुसीबतों और परेशानियों और बीमारियों से निजात मिलती जाएगी। कभी आपका दिल बेचैन हुआ है इस तरह, आप जिसको कहते हैं कसल मंदी, दिल पे बोझ है आज के दिन दौर में, सिंपल सी बात है, स्ट्रेस या डिप्रेशन, डिप्रेशन का इलाज इखलास है, ये जुमला लिख लें। बेचैनी, परेशानी, तकलीफ है ना, अंदर इखलास ले आइए, अल्लाह आपको मुश्किलात से निकालेगा। यहाँ वो हदीस नोट कर लें, तीन लोग जो गार में फंस गए और अपनी एक एक नेकी याद करते गए और गार से रास्ता बनता गया, क्योंकि वो नेकियां बड़ी मुश्किल थी। कौन है जो एक बकरी की जगह रेवड़ दे दे अपने उस मजदूर को जिसकी एक दिन की पे उसके जिम्मे थी? बड़ी मुश्किल नेकी है, वल्लाही ये बड़ी मुश्किल है। आप कहेंगे अब ये 99 तो मेरी हुई, एक पकड़ो तुम ले जाओ, का नहीं, ये तुम्हारी बकरी का सारा फल है, तुम सारा रेवड़ ले जाओ। और जो मनपसंद औरत जिससे मोहब्बत भी हो, ख्वाहिश भी हो, उसके ऊपर पूरा काबू पा जाए जैसे शौहर बीवी पे पाए, सिर्फ अल्लाह के लिए छोड़ देना, ये कोई छोटी बात है? याद है ना आपको? और माँ के लिए, बाप के लिए सारी रात प्याला हाथ में लेके दूध का खड़े हो जाना, ये छोटी बात है? ये इखलास की कीमत है। कभी किसी मुश्किल में पड़े, अल्लाह ना करे, लेकिन फिर भी आप पढ़ेंगे, मेरे कहने से होगा कुछ नहीं, उस वक्त खालिस हो, अंदर से खुरचे, कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो आपको रखेंगे। एक जुमला लिख लीजिए कि इखलास ही सफीना निजात है। सफीना कहते हैं कश्ती को, निजात की कश्ती है इखलास। जितना इंसान अपने दिल में इखलास लाता जाएगा, गम से निकलता जाएगा। फिर इसी तरह एक बहुत बड़ा फायदा है, और अल्लाह करे ये मुझे और आपको तो नसीब हो जाए, इखलास की वजह से वसवसे और बदगुमानियां नहीं आती। किसी इंसान के बारे में आप बदगुमान हैं या किसी काम के बारे में आपके दिल में वसवसा आता है, चेक कर लीजिए कि अंदर इखलास की कमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह महज अपने फजलो करम से हक के बारे में मुझे जिन चीज़ों में शुबा है ना, मुझे उसकी गहराई तक पहुंचा दे। अल्लाहुम्मारिन अल-हक का हक्कन वरज़ुकना इत्तबाहु, वारिन अल-बातिला बातिलन वरज़ुकना इज्तनाबहु। कि अल्लाह हक को मेरे सामने हक करके दिखा और बातिल को मेरे सामने बातिल करा के दिखा, और हक को मानने की तौफीक दे और बातिल से रुकने की तौफीक दे। ये क्या है कि इंसान को इखलास की बुनियाद पे हक और बातिल का फर्क समझ आ जाता है। फिर इसी तरह से सूरत अनफाल की आयत 29 भी नोट कर लें कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो हक और बातिल में फर्क करने की कुव्वत दे देगा, तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर करेगा और तुमको बख्श देगा। तो क्या मतलब हुआ कि इखलास की वजह से इंसान बुरे फैसलों से बच जाता है, ये भी नोट कर लें। देखिए, इंसान किसी के बारे में वसवसे का शिकार हो जाए या वहम परस्त हो जाए तो वहां से बदगुमानी शुरू होती है। जिस शख्स से आप बदगुमान होंगे ना, तो आपके दिल पर हिजाब आएगा, फिर उसकी खूबियां छुपती जाएंगी और उसकी छोटी छोटी खामियां जो हर इंसान में होती हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास में नजर आएंगी। नतीजा क्या होगा? आप उससे दूर होंगे। ये आपकी बहू भी हो सकती है जो बेचारी बड़े अरमानों से आप लेकर आए थे, एक दफा सास जब उससे बदगुमान होगी ना, उसकी छोटी छोटी चीजों को नोट करेगी, और ये हर रिश्ते में हो सकता है। ऐसे वक्त में इंसान इखलास की बुनियाद पे कायम रहता है। मिसाल दूंगी आपको ग़ज़वे उहद में अब्दुल्ला बिन उबई की, 300 लोगों को लेकर मुकामे शौत से पलट गया। सुना हुआ ना वाक्या? मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये सब पता है। पता है कि नहीं? नहीं पता तो ज़रा रोने वाला मुंह बना दिया करें ताकि मैं आपको बता दूं। अल्लाह ने नहीं रोका उन 300 को, गेट आउट, निकलो, कोई जरूरत नहीं, 300 लोगों को खिलाना पिलाना कोई आसान काम है, निकल जाओ। लेकिन जब बनू सलमा और एक और दूसरा कबीला, जिन दो के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि वो दो भी फिसलने लगे थे, ढीले होने लगे थे, अल्लाह ने पीछे से पकड़ के बुला लिया, क्योंकि वल्लाहु वलीयुहुमा, याद आए थे? तो वो क्या कहते थे कि गो के हमारी बुराई क्या कुरान में हुई है, सूरह आल इमरान कहते हैं, गो के हमारी बुराई है कि वो दो जिनके कदम फिसले, शैतान ने ख्याल डाला लेकिन हम खुश हैं इस बात पे कि वल्लाहु वलीयुहुमा, कहा अल्लाह उनका दोस्त है। बात वाजे हुई? तो वो दो कबीलों को अल्लाह ने क्यों बचाया? इखलास था। अल्लाह मुखलिस शख्स को जाने नहीं देता, ये लिख लें, जाया नहीं करता उसको। और इसकी हमारी मुस्लिम तारीख में बहुत सारी मिसालें हैं। जितना आपके मेरे अंदर इखलास आता जाएगा ना, हम सिक्योर हो जाएंगे। अल्लाह के नबी की एक बड़ी प्यारी रिवायत है, लंबी है, लेकिन उसमें दो तीन लफ्ज़ इसी मौजू के हैं, क्या के मिस सफीना। आपने हजरत अबू जर को एक मौके पे बुलाया तो आपने कहा कि अबू जर, आह के मिस सफीना, कश्ती को मजबूत कर लो। क्यों? फाइनल बहर अमीक, क्योंकि दरिया बड़ा गहरा है जो पार करके जाना है। ये गहरा दरिया जो है ना, ये इखलास का दरिया है। आपने कहा कि अपने आप को गुनाहों से पाक कर लो, कि हिसाब लेने वाली हस्ती बड़ी बारीक बीन है। तो मैंने, आपने बहुत बड़े बड़े स्कैनर्स में से गुजरना है। यहाँ तो हो सकता है आप छोड़ दिए जाएं। किसी ने एक पिक्चर भेजी, वीडियो थी, कि देखो एक शख्स फिलिपिनी था और किसी सऊदी किंग की बहन के घर जॉब करता था, जिस पे वो अंधा एतमाद करती थी। तो वो जब अपने मुल्क जा रहा था तो ज़रा देखें उसके सामान में से क्या निकला। तो वो वीडियो में था, तो मैंने जिस इबरत के साथ उसको देखा, तीन सूटकेस थे और उसमें गाजर मूलियों की तरह सोने से भरे हुए थे, चूड़ियाँ, ब्रांड न्यू सोना और नोटों की गड्डियाँ, और उसने हाथ का नहीं जो चेक इन होता है, तो वो उसमें आगे स्कैनर में। कितने गुजर भी जाते होंगे, लेकिन दुनिया के स्कैनर्स ने सोना जो चोरी का था या नकली था या वट जो था चुन लिया ना, तो क्या अल्लाह की आपकी मेरी नहीं है? आप देखिए कि कभी आप एक नेल कटर भी भूल जाते हैं ना अपने हैंड कैरी में, तो वो उनकी मशीन ने खोल के वो दिखाती हैं। मैं बड़े दिलचस्पी से देखती हूँ, फिर वो कभी कोई ऐसी चीज़ है ना, मेरे पास यहाँ नहीं है अभी आजकल, चेक पैंदा होता है और माइक होल्डर मैं अक्सर सफर में साथ रखती हूँ, इधर से गया हुआ है, तो वो मेटल का चूंकि बहुत बड़ा, और नीचे हर जगह जहां भी सिक्योरिटी से वो हमारा बैग गुजरता है ना, तो उसकी वजह से हमारा बैग रोक लेते थे। वो कहते ये गोल क्या, और मेटल नहीं जाने देते, उनको डर होता है। तो अब उसका हमने हल ये किया कि अब जब वो बैग खोलते तो उसमें से वो निकाल के बाहर ही रख देते थे ना। तो मैं उसको देखती, मैं कहती तुम्हें कैसे पता चलता है क्या है? पानी हो तो उनको पता चल जाता है। इस बार हम आ रहे थे तो इतना बड़ा वो पीनट बटर हमारी जो होती उसने डाल दिया अंदर बैग में, दे दिया, तो वो उसने निकाल लिया। मैंने कहा ये क्या? कहती मैंने कहा ये लिक्विड तो नहीं? कहती बट इट्स क्रीमी, तुम सिर्फ इतना सा लेके जा सकते हो, वो इतना बड़ा था। मैंने कहा इसको फेंकना नहीं, तुम खा लेना, ले लो, मुझे कोई परवाह नहीं है। वो नहीं जाने देते। पानी की बोतल खोली, पानी इतना सा था उसमें। मैंने कहा मैं पी लूँ, अभी ये अमेरिका की बातें आते हुए। तो मैंने उन्हें कहा कि अच्छा फेंको नहीं, मैं पी लूँ। कहने लगा मैम यू कैंट ईट ड्रिंक हेयर, पीना है तो वापस जाओ पीछे, वहां बाहर पी के तो फिर दोबारा मशीनों से आओ। मैंने कहा मैं नहीं जाती, पहले जान छूट के निकल आए। दुनिया के स्कैनर्स, पानी देखें, नेल कटर देखें, पीनट बटर आपका देख लें, और अंदर छुपी हुई कई चीजें, कभी गलती से रह जाती है, कोई नहीं याद रहता बंदे को, वो देख लेते हैं। तो क्या अल्लाह के स्कैनर नहीं है? ये अल्लाह के स्कैनर हैं जो इखलास को चूज करेंगे, और अंदर की खोट खपट जो है वो उसमें से निकलेगी, कहाँ क्या किस नीयत से किस इरादे से किया। फिर इसी तरह से इखलास का एक और फायदा कि बंदे का आम दर्जा होगा, लेकिन उसको अल्लाह बढ़ा देगा, दर्जात का जरिया होगा। इसका नोट कीजिए हवाला, सूरत तौबा आयत 92। वला अललजीन इजा मा तौक लितहमिलहुम कुलत ला जिदु मा अहमिलुकुम अलैही, और ना तो इन लोगों पर कि जब वो तेरे पास आए ताकि तू इन्हें सवारी दे, तो तूने कहा मैं वो चीज नहीं पाता जिस पर तुमको सवार करूं। वो इस हाल में वापस हुए कि इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और इस गम से कि वो नहीं पाते जो खर्च करें। नहीं जा सके थे ना तबुक के सफर में, लेकिन उनके इखलास ने घर बैठे उनको तबुक के लोगों के अंदर शामिल कर दिया था। और अल्लाह के नबी ने तबुक के मौके पे फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, कि मदीना मुनवरा में कुछ लोग ऐसे रह गए हैं कि नहीं कोई वादी हमने पार की मगर वो हमारे साथ थे, हालांकि उनको उजर ने हमारे साथ नहीं जाने दिया और वो हमारे हमरकाब थे। तो कई लोग आज नहीं आए होंगे इस कोर्स को करने, लेकिन वल्ला ही वो साथ होंगे हमारे। हदीस में आता है कि कुछ लोग हैं तो उनको आकर मस्जिदों में फरिश्ते ढूंढते हैं। ये मैंने इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह पे हदीस सुनाई हुई है सबीलुल जन्ना में, आपको हामीम सजदा में। कुछ लोग मस्जिदों की मेखें हैं ठुके में, जब वो मस्जिद में नहीं होते तो फरिश्ते आके उनको सफ़ों में ढूंढते हैं वो किधर गए। फरमाया वो उनको जब वहां नहीं पाते तो फिर जाते हैं वापस घर में, अगर वो बीमार हो तो उनकी तीमारदारी करते हैं, और अगर वो किसी काम में परेशान है तो फरिश्ते उनके साथ बर्तन शर्तन धोते होंगे, जो बीवी ने कहा धो के जाओगे मस्जिद में, नहीं तो नहीं जाओगे। ये तुमने क्या 5 टाइम जाने का बहाना बना लिया? तो वो फरिश्ते कैसे आते हैं? आपके इखलास के साथ आते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। फिर इसी तरह से आप पे इखलास का एक और फायदा जो इन्होंने यहाँ लिखा है वो भी नोट कर लें कि इखलास हसूले अजर का सबब है। इखलास के मुताबिक नेकियों का वजन होगा, जितना इखलास ज्यादा उतना वजन ज्यादा, और इसी के साथ इंसान की खताएं भी माफ हो जाती हैं। हत्ता कि अगर किसी ने इज्तहाद किया, गलत फैसला हो गया, तो उसको फिर भी एक नेकी मिलती है, ये इखलास की वजह से कि नीयत बुरी नहीं थी कि गलत फैसला हो, और इसके ऑपोजिट। फिर इसी तरह से एक बहुत बड़ा फायदा है, गुनाहों का माहौल बना हुआ है, जैसे आज की सोसाइटी आप कहीं दुनिया में कहीं भी हो, इंसान इखलास की वजह से फितनों और मजीद गुनाहों में गिरने से बच जाता है। मिसाल हजरत यूसुफ की है, फिर बात वाजे होगी। हजरत यूसुफ जब अजीज मिस्र के घर में थे तो उसकी बीवी ने इरादा किया था ना, सूरत यूसुफ आयत 24, वलकद हम्मत बिही व हम्म बिहा, कि उस औरत ने यूसुफ का इरादा किया और वो भी कर लेते, क्या ना करने की वजह, ये नोट कर लें, लौला रुआ बुरहान रब्बी, अगर वो अपने रब की दलील ना देख लेते। तो ये दलील क्या थी? मुहद्दसीन मुफस्सरीन कहते हैं ये यूसुफ का इखलास था। तो गुनाहों का मौका कितना करीब हो, कोई औरत ही पकड़ ले मर्द को, या किसी जगह औरत के दिल में फितना आ जाए, अल्लाह ऐन वक्त पे उसको बचा लेता है उसके इखलास की वजह से, ताकि अल्लाह बेहयाई और बुराई को रोक दें। और सूरह साफ़ात आयत 41 से 43 है, उलाइक लहुम रिज़्क़ुम मालूम फवाकिहुम मुकरमून फी जन्नात नईम, मुखलस बंदों की अल्लाह ने तारीफ की है कि इनको जन्नत में मुकर्रर रिस्क है, कई फल हैं और वो इज्जत बख्शे जाएंगे। तो सारी बात का खुलासा क्या निकला कि एक इंसान जितना मुखलस होता जाएगा, अल्लाह सुब्हान तआला उसको उतना ही ज्यादा देगा, उतनी उसके साथ मामले होंगे। फायदे और भी बहुत सारे हैं जो अगले वाक्यात हम अब सुनेंगे अगले सेशन में, कि लोग जो मुखलस थे उनकी जिंदगियां कैसी थी। उसके बाद तो वाकई वो कहना लगता है कि चुल्लू भर पानी में बंदा डूब मरे, अपनी नेकियां छटांक भर की लगने लग जाती हैं। जब हम इतने नेक लोगों को अपनी नेकियों के मामले में देखें कि वो कितने ज्यादा इस मामले में थे, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमारे लिए इस मामले को आसान कर दे। और एक दो छोटी सी बातें जो इसी के साथ है, ताकि अगला सेशन फिर हम पूरे अलग तरीके से शुरू कर सकते हैं, कि इंसान अकीदे में भी मुखलस हो, ये चंद जुमले लिख लें आपको फायदा होगा भी, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में भी मुखलस हो, नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ते हुए भी मुखलस हो, सजदा करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए करे, वस्जुद वक्तरिब, हदीस में आता है जो खलूस नीयत से सजदा करता है अल्लाह उसके बदले एक दर्जा बुलंद करता है और एक गुना माफ कर देता है, फिर रोजा रखे तो भी मुखलस हो, हदीस में आता है जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रमजान के रोजे रखे अल्लाह से अजर की उम्मीद पे, तो अल्लाह उसके गुना माफ कर देता है। ये रिवायत जो है बुखारी की, और अगली भी सारी बुखारी की रिवायतें, एक रिवायत में आता है जिसने अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोजा रखा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नुम की आग से 70 साल दूर कर देता है, 70 ईयर्स। फिर इसी तरह जिसने रात का क्याम किया इखलास के साथ, तो अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ करता है, ये भी बुखारी की रिवायत है। फिर इसी तरह से बुखारी की एक और रिवायत में आता है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करना और सदका और खैरात करना, हराम कामों से रुकना, ये भी इंसान के लिए यानी इखलास की बुनियाद पे आसान हो जाता है। और वो 7 लोगों की हदीस तो आपने बार बार सुनी हुई है कि जो अल्लाह के अर्श के नीचे होंगे उसमें से एक वो शख्स है कि जिसने दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत की। फिर इसी तरह मस्जिद की तरफ जाना, ये भी इन्होंने नोट किया, आप मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, नीयत क्या है? इखलास है तो कबूल है, नहीं तो नहीं है। हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जमात की नमाज अदा करने का सवाब घर में या बाजार में तनहा नमाज पढ़ने से 25 गुना ज्यादा है। जो शख्स अच्छा वजू करे, फिर इसका हक अदा करे, फिर मस्जिद में सिर्फ नमाज अदा करने के लिए जाए, तो जो कदम रखता है हर कदम पर उसका एक दर्जा बुलंद और एक गुना बख्श दिया जाता है, और जो नमाज अदा करता है फरिश्ते इस पर दुरूदो सलाम भेजते हैं। जब तक वो अपनी नमाज की जगह पे मौजूद रहता है, फरिश्ते कहते हैं, अब जरा सुनिए, कि जो अपनी जगह पे बैठा है नमाज के बाद, फरिश्ते कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, ए अल्लाह इस पर रहमतें भेज, अल्लाहुम्मा रहमहू, ए अल्लाह इस पर रहम कर दे। फरमाए तुम में جو انتظار میں ہے نماز کے وہ نماز کی حالت میں ہی گنا جاتا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح شہادت کی تمنا اخلاص کے ساتھ، جس نے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی نیت سے اللہ کا کام کیا، اللہ اس کو شہادت کا اجر دے دیتا ہے چاہے گھر کے بستر پہ مرے. پھر اسی طرح جنازے کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان کے جنازے کو اٹینڈ کیا ایمان اور اجر کی نیت سے، اور میت کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی، اسے دفن کیا، اس کو 2 قراءت ثواب ملے گا، اور ہر قراءت احد پہاڑ کے برابر ہے، یہ بخاری کی روایت ہے. کون جائے گا نماز جنازہ پڑھنے تک؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ برادری کا تھا، خاندان کا تھا، صرف اور صرف اللہ کا بندہ. اسی طرح توبہ بھی اخلاص کے ساتھ قبول ہوگی، جھوٹی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. 100 لوگوں کے قاتل کی مثال لکھ لیں اس میں، 100 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی اللہ نے سبب بنا دیا اس کی بخشش کا کہ زمین کو سکیڑ دیا، یا اس کی تھوڑی سی کوشش تھی اور جنت کی طرف قدم بڑھ چکے تھے تو جنتی ہو گیا، جہنم سے دور تھا تو وہ چلا گیا. وہ مشہور واقعہ آپ خود پڑھ لیں، اس بک میں موجود ہے. انشاءاللہ یہ بہت ساری باتیں جو آپ کو مل رہی ہیں، جس وقت آپ کے سامنے بک ہوگی یا جن کے پاس ہے، آئی ایم شیور کہ ان کو نوٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا. جو بیچ میں انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہی صرف آپ نوٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت سارا فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا تو 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے. لکھیے ذرا اپنے آپ کو میں کدھر ہوں. ایک وہ جس کو اللہ نے مال و دولت اور علم سے نوازا، اور وہ اس مال کو تقوی اور پرہیزگاری اور صلہ رحمی پہ خرچ کرتا ہو، اور اس میں اللہ کا حق بھی رکھے، اللہ کے حق کا خیال رکھے. یہ سب سے افضل ترین ہے، سب سے پہلا شخص، یعنی جو کچھ اللہ نے اس کو علم، مال، علم، دولت، تقوی دیے، یہ سب اچھی طرح سے خرچ، یہ بیسٹ شخص ہے. نمبر 2، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم تو دیا مگر مالی اعتبار سے مجبور تھا، مال کم تھا، علم بہت تھا، مگر نیت خالص تھی. کیا کہتا تھا؟ اگر میرے پاس مال و دولت بھی ہوتا نا تو میں بھی فلاں کی طرح خیر کے کاموں میں صرف کرتا. یعنی اس کے کہنے پہ جو لوگ ڈونیشنز دے دیتے تھے، صدقہ دیتے تھے، اس کو دے کر کہتا تھا کبھی میرے بھی پاس اتنا ہوتا تو میں خرچ کرتا. تو فرمائے یہ پہلے کے بالکل برابر ہے، مال نہیں تھا لیکن خواہش پہ اس کو مال مل گیا. تیسرا شخص ایسا ہے کہ اللہ نے جس کو مال و دولت سے سرشار کیا مگر علم سے کورا، اور اپنے مال میں بغیر علم کے اٹکل لگاتا پھرتا ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ خشیت ہے، نہ صلہ رحمی ہے، اللہ کے مال میں سے اس کا حق بھی نہیں دیتا. یہ خبیث ترین ہے، اپوزٹ ہے پہلے کا. چوتھا خود ہی سمجھ جائیں گے، وہ چوتھا وہ شخص ہے کہ جس سے اللہ نے نہ تو مال دیا نہ علم دیا. وہ کہتا ہے مال ہوتا تو ایسے ہی خرچ کرتا جیسے لوگ دنیا میں خرچ کرتے ہیں، اور علم ہوتا تو لوگوں کی برائیاں کرتا اور رنگ رلیاں مچاتا اور وٹ ایور. تو فرمایا یہ پہلے سے گناہوں کے اندر بالکل برابر ہے. جس طرح نیک نیتی انسان کے اجر کو بڑھاتی ہے نا، اسی طرح بد نیتی اس کے اجر کو کم کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اخلاص عطا کرے. انشاءاللہ اب اس سے اگلے سیشن میں ہم واقعات اور سٹوریز دیکھیں گے کہ کس طرح مخلصین کی تھی، اور وہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کے لیے بہترین ماڈل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سارے ثمرات لینے والا بنا دے. یہاں پہ رکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.